नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं शक्ति प्रताप सिंह। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद और नवरोज के अवसर पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन से बातचीत की। दोनों नेताओं ने त्योहारों के मौसम में पश्चिम एशिया में शांति, स्थिरता और समृद्धि की कामना की। संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और जापान सहित 22 देशों ने ईरान से हमले रोकने और हॉर्मुज जलडमरू मध्य फिर से खोलने का आग्रह किया। पश्चिम एशिया संघर्ष में अमेरिका ने ईरान के विरुद्ध सैन्य अभियान समाप्त करने के संकेत दिए। ईरान ने कहा, युद्ध पूरी तरह समाप्त होना चाहिए। वैश्विक ऊर्जा बाजार स्थिर करने के लिए अमेरिका ने फंसे हुए ईरानी तेल पर प्रतिबंधों में ढील दी। दक्षिण कोरिया के ऑटो पार्ट्स कारखाने में आग लगने की घटना में मृतकों की संख्या 14 हुई। और मुंबई में इंडियन ओपन स्क्वाश में भारत की अनाहत सिंह ने हमवतन खिलाड़ी तन्वी खन्ना को 3-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन से टेलीफोन पर बात की। प्रधानमंत्री ने खाड़ी क्षेत्र के महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रतिष्ठानों सहित ढांचागत केंद्रों पर हुए हमलों की निंदा की। श्री मोदी ने कहा कि ये हमले क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा हैं और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बाधित करते हैं। श्री मोदी ने भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए ईरान के निरंतर सहयोग की सराहना की। प्रधानमंत्री ने श्री मसूद को ईद और नवरोज की शुभकामनाएं भी दी। दोनों नेताओं ने इस त्यौहार के समय पश्चिम एशिया में शांति, स्थिरता और समृद्धि की कामना की। दक्षिण कोरिया हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के प्रयासों में शामिल होने के लिए तैयार हो गया है। एक रिपोर्ट।
वैश्विक तेल और गैस की करीब 20% आपूर्ति हॉर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते होती है। दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वे खाड़ी में किए गए ईरान के हमलों और हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की निंदा के यूरोपीय देशों और जापान सहित 7 देशों के संयुक्त बयान का समर्थन करेगा। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड्स और कैनेडा ने संयुक्त बयान जारी कर ईरान से रणनीतिक जल मार्ग को अवरुद्ध करने के प्रयासों और हमलों को रोकने तथा नौवहन की स्वतंत्रता के सिद्धांत का पालन करने का आह्वान किया है। विश्व दर्पण के लिए प्रशांत कुमार।
इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ अपना सैन्य अभियान खत्म करने पर विचार कर रहा है।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अपने लक्ष्य को पूरा करने के करीब है। उन्होंने संकेत दिया कि अन्य देशों को हॉर्मुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा में आगे बढ़ना चाहिए। श्री ट्रंप ने साथ ही चेतावनी दी कि किसी भी व्यवधान से वैश्विक ऊर्जा संकट उत्पन्न हो सकता है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने कहा है कि ईरान युद्ध का पूर्ण, व्यापक और स्थायी अंत चाहता है और उसे युद्ध विराम स्वीकार नहीं है। श्री अराघची ने अमरीकी इसराइली हमलों को अवैध और बिना उकसावे के आक्रामक कार्य बताया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कार्रवाई करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि युद्ध के किसी भी समाधान में भविष्य में हमलों के खिलाफ गारंटी और नुकसान की भरपाई शामिल होनी चाहिए। श्री अराघची ने ब्रिटेन को भी चेतावनी दी कि अगर युद्ध में उसकी भागीदारी बढ़ती है तो जवाबी कार्रवाई की जाएगी। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि राजनयिक प्रयासों के जारी रहने के बावजूद अमरीका ने अभी तक वास्तविक समाधान के लिए तत्परता नहीं दिखाई है। समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
इस बयान के बीच ईरान ने पुष्टि की है कि अमेरिका और इसराइल ने आज सुबह उनके नताज स्थित परमाणु संयंत्र पर संयुक्त हमला किया। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन ने कहा है कि संयंत्र पर हमला हुआ है लेकिन रेडियोधर्मी का रिसाव नहीं हुआ है। ईरान ने लचीले रुख का संकेत दिया जिससे पता चलता है कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में पूरे व्यवधान से बचने के लिए वे हॉर्मुज जलडमरू मध्य से कुछ व्यापारिक जहाजों को गुजरने की अनुमति दे सकता है। अमेरिका ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर युद्ध के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से ईरान पर लागू तेल बिक्री के कुछ प्रतिबंधों में ढील दी है। इससे समुद्र में फंसे माल की सीमित बिक्री की अनुमति मिल गई है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने जहाजों पर पहले से लदे ईरानी कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री के लिए एक सीमित अल्पकालिक अधिकारों की घोषणा की है। ये 19 अप्रैल तक वैध है। इस कदम से वैश्विक बाजार में लगभग 14 करोड़ बैरल तेल उपलब्ध हो सकता है। इस छूट से भारत, जापान और मलेशिया जैसे देशों को तेल की आपूर्ति हो सकती है। सऊदी अरब में भारतीय दूतावास दम्मम, जुबेल और हाइल में भारतीय समुदाय के लोगों को वाणिज्यिक तथा सत्यापन सेवाएं प्रदान कर रहा है। दूतावास ने कहा कि भारतीय समुदाय के लोगों के वाणिज्यिक सेवा संबंधी मुद्दों को संतोषजनक ढंग से निपटाया जा रहा है। इस बीच विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज शाम ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची से बातचीत की। उन्होंने श्री अराक्ची को नवरोज और ईद की शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि ये बातचीत संघर्ष से संबंधित नवीनतम घटनाक्रमों और व्यापक क्षेत्र पर इसके प्रभाव के बारे में थी। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि अमरीका ने पश्चिम भारत से ईरान पर बमबारी करने के लिए सैन्य संसाधनों का समर्थन करने का अनुरोध किया था। मंत्रालय ने लोगों से सोशल मीडिया पर इस तरह के झूठे और निराधार दावों और पोस्ट से सतर्क रहने का आग्रह किया है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। दक्षिण कोरिया के मध्य शहर डेजोन में वाहनों के कल पुर्जे बनाने वाले कारखाने में लगी आग में मृतकों की संख्या 14 हो गई है जबकि 59 लोग घायल हुए हैं। राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने आज घटनास्थल का दौरा कर राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों से मुलाकात की और बचाव कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सभी की मदद सुनिश्चित करें और आग लगने के कारणों के बारे में नियमित रूप से जानकारी प्रदान करें। कल आग के समय लगभग 170 कर्मचारी कारखाने के अंदर मौजूद थे। 10 घंटे से अधिक समय के बाद आग पर काबू पा लिया गया। ब्रिटेन ने हिंद महासागर में स्थित डियोगो गार्सियो द्वीप पर ईरान के मिसाइल हमले की कड़ी निंदा की है। ब्रिटेन के अधिकारियों ने इस असफल हमले के बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी। ये स्पष्ट नहीं है कि मिसाइलें ईरान से लगभग 2500 मील दूर स्थित इस अड्डे के कितने करीब पहुंची। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने आज कहा कि ईरान के पूरे क्षेत्र में हमले और हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंधक बनाना ब्रिटिश हितों और सहयोगियों के लिए खतरा है। विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था कोविड महामारी के बाद से प्रभावों, भू राजनीतिक संघर्षों और आपूर्ति श्रृंखलाओं के असाधारण दौर से गुजर रही है। उन्होंने ये बात नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कही। श्री दलेला ने कहा कि विशेष रूप से भारत जैसे विकासशील देश वैश्विक वृद्धि के प्रमुख चालक के रूप में उभरे हैं। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ अब वैश्विक GDP में 42% से अधिक का योगदान दे रहा है। मुंबई में इंडियन ओपन स्क्वाश प्रतियोगिता में अनाहत सिंह ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में आज अनाहत ने तन्वी खन्ना को 3-1 से हराया। वहीं पुरुष वर्ग में अभय सिंह ने भी प्रतियोगिता के फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में आज अभय ने अजीब नाज चंद्रन को हराया। दूसरे सेमीफाइनल में वीर चोटानी का मुकाबला संजय जीवा से जारी है। बांग्लादेश में ईद धार्मिक उत्साह के साथ मनाई जा रही है। इस दौरान नमाज, दान और सामुदायिक सभाएं आयोजित की जा रही हैं। पश्चिम एशिया युद्ध सहित विश्व में चल रहे संघर्षों के बीच प्रभावित दुनिया में शांति और स्थिरता के लिए विशेष नमाज अदा की गई। ढाका के राष्ट्रीय ईदगाह में आयोजित विशेष नमाज में राष्ट्रपति मोहम्मद साहबुद्दीन और प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने एक साथ नमाज अदा की। तीनों दशकों से अधिक समय में ये पहली बार हुआ है जब इन नेताओं ने एक साथ नमाज अदा की है। इस बीच भारत और दक्षिण एशिया के कई देशों में भी ईद का पर्व धार्मिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भारत के प्रमुख शहरों में दिल्ली और मुंबई में बड़ी मस्जिदों में नमाज अदा की गई। और अंत में इस समाचार बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद और नवरोज के अवसर पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन से बातचीत की। दोनों नेताओं ने त्योहारों के मौसम में पश्चिम एशिया में शांति, स्थिरता और समृद्धि की कामना की। संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और जापान सहित 22 देशों ने ईरान से हमले रोकने और हॉर्मुज जलडमरू मध्य फिर से खोलने का आग्रह किया। पश्चिम एशिया संघर्ष में अमेरिका ने ईरान के विरुद्ध सैन्य अभियान समाप्त करने के संकेत दिए। ईरान ने कहा युद्ध पूरी तरह समाप्त होना चाहिए। वैश्विक ऊर्जा बाजार स्थिर करने के लिए अमेरिका ने फंसे हुए ईरानी तेल पर प्रतिबंध में ढील दी। दक्षिण कोरिया के ऑटो पार्ट्स कारखाने में आग लगने की घटना में मृतकों की संख्या 14 हुई। और मुंबई में इंडियन ओपन स्क्वाश प्रतियोगिता में भारत की अनाहत सिंह ने हमवतन खिलाड़ी तन्वी खन्ना को 3-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं पुरुष वर्ग में अभय सिंह ने फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।